भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ का चौथा अध्याय जो ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से जाना जाता है, ज्ञान कर्म और संन्यास यानी कि कर्मों ऐसे ढंग से करें जिसकी कोई हमें बंधन नहीं पड़ता। तो ज्ञान कर्म संन्यास वो भी तीनों मिलाकर एक ऐसा योग बनता है जो कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो इस श्लोक नंबर 14 उसमें भगवान कहते हैं कि नमाम कर्माणि विम्पन्ति न मे कर्म फलेष्वरा इतियो माम अभिजानाति कर्मभिर् न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता क्योंकि मुझे कर्मफल की कामना नहीं है। मेरे संबंध में इस सत्य को जानने वाला भी कर्मफल में दीपायमान नहीं होता। यह संसार का सर्वसामान्य अभिधान है, संविधानिक अभिधान है कि राजा दंडनीय अथवा राज नियमों से अधीन नहीं होता। The president is above the law. इस न्याय से भगवान भी अपने द्वारा रचित प्राकृत जगत की क्रियाओं से लिपायमान नहीं। जब ये लोग कोई सरकार और खास करके प्रेसिडेंट पर लांच रिश्वत यानी कि करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, तो जज मोई अपनी क्लेमेंसी राइट खड़ा कर देते हैं कि वेल अमेरिका में उसे फिफ्थ अमेंडमेंट कहते हैं, यानी कि ये ऐसा कानून है तो कानून का स्पेशल जो प्रिविलेज है तो प्रेसिडेंट को लागू होता है। वो चाहे कितना गोलमाल भी क्यों न करे उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी कि भगवान यदि प्रेसिडेंट के लिए ऐसा न्याय में प्रबंध है तब भगवान को भला क्यों नहीं, भगवान के लिए क्यों नहीं? जब एक मामूली आदमी जो प्रेसिडेंट 4 साल तक रहता है उसके लिए यदि माफी हो सकती है या उसे कोई उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता, किसी न किसी ढंग से छूट जाते, तो भगवान क्यों सामान्य कार्यों में लिप्त रहेंगे? वो उसमें क्या ताकत नहीं छूटने की, उसको हम क्यों ये करें? भगवान अपने द्वारा रचित प्राकृत जगत की क्रियाओं से लिपायमान नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे उसमें असंग रहते हैं, यानी कि भगवान ने भौतिक दुनिया बनाई लेकिन भगवान उसमें रहते हैं नहीं। असंग रहना यानी कि इनका विस्तार इत्यादि सब कुछ होता है लेकिन वो स्वयं नहीं रहते, वो स्वयं नहीं रहते। तो जब हमारी क्या दशा होती है, यानी कि इसके विरुद्ध हम भौतिक प्रकृति के पदार्थों पर अपनी हुकूमत चलाने के लिए प्रभुत्व करने की प्रवृत्ति के कारण जीवात्मा कर्म फल में बंधे जाते हैं। हमारा उदाहरण देखें तो यदि हम चोरी करें तो सजा होती है, जब भगवान चोरी करे तो उसकी पूजा होती है। यानी कि भगवान को ये जगत के कानून लागू नहीं होते। भगवान गोपियों का कितना मक्खन चुराता था, कोई पुलिस डिपार्टमेंट आई थी पकड़ के ले गई थी ना, और गोपियों ने पकड़ने की कोशिश करी तो भगवान ने उल्लू को कोई उल्लू बना दिया। हमें पता है ना तुझे, एक बार गोपियों ने सोचा कि चलो इस बार ये लाला माखन चुराने आता है तो अवश्य उसको पकड़ने के लिए हम एक नई तरकीब आजमाए। मक्खन ऊंचे लटकाया शीखे पर और एक घंटी भी बांध रखी, घंटी भी बांध रखी कि जैसा सिक्का हिलता है मक्खन चुराने के लिए पकड़ना पड़ता है, वो जो हिलता है तो घंटी बज जाएगी, और यानी कि सबको पता चल जाएगा घंटी बजी है, चलो पकड़ो आया है चोर। तो भगवान ने देखा कि देखो ये गोपियां बहुत सारी मुझे पकड़ने की साजिश कर रही है, तब मैं भी बता दूंगा, अरे घंटी मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुझे पता है ना मैं ऑर्डर देता हूं कभी बचना नहीं। तो घंटी बोली ठीक है प्रभु, आप मेरे मालिक हो, मैं नहीं बजूंगी, आप चोरी करो, मैं नहीं बजूंगी। लेकिन भगवान आए चोरी करने के लिए और मक्खन उठाया, जैसा मुंह में डाला तो घंटी बजी और भगवान पकड़ा गए। तो भगवान घंटी को डांट मारने लगे, हे तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती है, पता नहीं मैं सारे जगत का मालिक हूं, इतना मक्खन थोड़ा चुराया उसमें क्या मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। कि हम क्या करें भगवान, भोग तो लगना चाहिए, तो बिना घंटी के से भोग लगेगा, इसलिए बज गई, वैसे तो नहीं बजती, आपकी आज्ञा का पालन करती हूं, लेकिन जब भोग लगाने का समय यानी कि आप खाने लगेंगे तो घंटी बजनी चाहिए। घर में भोग चढ़ाते हैं तो घंटी बजाते हैं टिंग 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 टिंग, तो यहां तो गोपी आ गई पकड़ लिया है लाला चोर, अभी पकड़ा गया चल तेरी मजा करेंगे भी, घिसट के ले जाती है यशोदा माता के पास। तो लाला देखा कि ये सब आज मेरे पीछे पड़ी है, मुझे डांट मरवाना चाहती है, मुझे रुलाना नहीं चाहती, चल मैं भी चखाऊं हो जाए। तो उसने अपने दोस्त को ले लिया साथ में, और जैसे वो गोपी उसे घिसट के ले जाती थी तो उसके बोलने लगे, भगवान बोलने लगे, ए ए अरे तू देख तो सही मेरे नाजुक कलैया तू मोड़ देगी, जरा हल्के से पकड़, आता हूं क्या डांट मरवाएगी देखो तो सही, हाँ जरा ढीला कर हाथ, और थोड़ा ढीला करती है। उसमें लाला ने क्या किया, अपना हाथ छुड़वा लिया और अपने मित्र का हाथ डाल दिए, और धीरे धीरे खिसक गए। तो गोपी को पता भी नहीं चला, तो गोपी चिल्ला के आई, ओ यशोदा माता इधर आओ जल्दी, ये लाला को मैंने चोरी करके पकड़ा है, आज तो आज तो मैं डांट मरवा के बिना रहूंगी नहीं। तो यशोदा माता कह, तू पागल है क्या, किसको पकड़ के लाई है, मेरा लाला ऐसा करता ही नहीं, क्या ये देखो तुम्हारा लाला। तो तू लाला को देखने जाती थी तो लाला ही कोई और दूसरा, तो भगवान ऐसे चालाक हैं, किसी भी चीज में फंसते नहीं, काम करते हैं चोरी का लेकिन फंसेंगे नहीं, उनको कानून नहीं लागू होता है। कई मूर्ख मायावादी कहते हैं कि देखो भगवान ने अवतार लेना पड़ा और भगवान को भी मरना पड़ा, नहीं वो तो कर्म के फल भोग रहे हैं। अरे मूर्ख, न माम कर्माणि विपन्ति न मे कर्म फलेष्वा इत्येव माम अभिजानाति कर्म भी अभिलभ्यते। मुझे कर्म कभी लिपायमान नहीं करते क्योंकि मुझे कर्म फल में आसक्ति नहीं है। कर्म फल ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें बंधन में फंसा देती है। जन्म मृत्यु यानी कि बारंबार दूसरे जन्म के लिए तैयारी भी अपना कर्म फल ही करता है। हम दूसरे जन्म में कैसे बनेंगे तो इस जन्म के कर्म के आधार पर उसका भविष्य में तय होता है। हम क्या कर रहे हैं इसलिए हमें धर्म दिया गया कि धर्म के नियम का पालन करके हम अपना ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है उसको भी हम टाल सकेंगे, नहीं तो फंसेंगे। जो धर्म का पालन नहीं करते तो फंसेंगे। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों से उचित अनुचित कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होता, कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होता है। जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति के लिए नाना क्रियाओं में संलग्न है। भगवान ने इन क्रियाओं का विधान नहीं किया है, तथापि जीवात्मा उत्तरोत्तर अधिक उत्तम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इस संसार में कर्म कर रहे हैं और मृत्यु के अनंतर स्वर्गीय सुख चाहते हैं। हम लाख आर्ग्यूमेंट करें लेकिन भगवान को हम कर्म के जिम्मेदार नहीं बनाते हैं। कर्म की जो सारी क्रिया है वो जीव चाहता है, जीव चाहता है। भगवान की शक्ति का उपयोग करके वो जीव अपनी मनमानी करना चाहता है, इसलिए जो क्रियाएं होती है मनमानी उसे कर्म कहते हैं। उसका फल होता है क्योंकि वो मन को मनाने के लिए काम करता है, तो काम के पीछे हमें कोई परिणाम मिलता है, कर्म फल जिसे कहते हैं। तो कर्म फल वो प्राप्त करना चाहता है, ऐसी ही भावना है कि ये अच्छे ही कर्म फल होंगे। लेकिन पता नहीं कर्म फल अच्छे होंगे तो अच्छी रस्सी से बंधोगे, रेशम की रस्सी से बंधोगे। कर्म फल बुरा है तो ये नारियल की रस्सी से बंधोगे, वो बात स्मूथ नहीं होती, यानी कि वो ज्यादा पीड़ा करेगी। लेकिन बंधन तो है ही। जब आजादी की लड़त चालू थी तब राजद्वारी पुरुषों को जेल में डाला जाता था, तो उनको फर्स्ट क्लास ए ग्रेड की केबिन मिलती थी जेल। सामान्य आदमी यदि कोई चोरी करता था उसे थर्ड क्लास जेल का खाना मिलता था। तो क्या हुआ, जेल तो जेल है ना, बंधन में है ना, ए क्लास या थर्ड क्लास किसी भी क्लास, जेल तो जेल ही है। ये कर्म फल तो जो तमोगुणी होता है तो तामसिक कर्म का फल भी तामस होता है, तो उसे सी ग्रेड की जेल जैसी मिलती है, वो काफी दुखी होता है, अपना मनुष्य जीवन गंवा देता है। दूसरे राजसिक लोग होते हैं जो ऐसी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव कुछ न करने रुके भी ही नहीं जाते, उनको कुछ न कुछ करना पड़ता है। देखो ये हाइपर एक्टिव है, ये बच्चे हैं हाइपर एक्टिव कहलाते हैं। हाइपर एक्टिव यानी कुछ न कुछ करते रहते हैं, गड़बड़ी, सही ना, तो हाइपर एक्टिव और रजोगुण के कारण है। तो रजोगुण का फल शुरुआत में मीठा होता है लेकिन अंत में दुख देता है। लेकिन सात्विक कर्म जो होता है उसका अच्छा फल होता है। लेकिन अच्छी भावना यानी कि अच्छी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, इस भावना से हम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। यदि हम किसी के लिए थोड़ा अच्छा काम करें तो कम से कम स्वर्ग में जाना तो मिलेगा, यानी कि अच्छा बंधन वहां स्वर्ग में मिलता है। बंधनों से तो मुक्ति होनी चाहिए, बंधनों लेकर, बंधनों का बोझ लेकर हम कहां तक जाएंगे, जा ही नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं कि यदि मुझे कर्म करने में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कर्म फल में आसक्ति नहीं है, यानी कि मैं कर्म फल से बनता नहीं हूं। तो यदि जो मनुष्य इसी तरह कर्म करते रहते हैं मेरे अनुसार, मैं जैसे सिखाता हूं कि कर्म फल की आसक्ति के बिना यदि कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन से वो भी छूट जाते हैं, वो भी छूट जाते हैं। श्री भगवान पूर्ण आप्त काम है उनमें तथा कथित स्वर्गीय सुख के प्रति लेश मात्र आकर्षण नहीं है। यानी कि वो अच्छा काम करने वाले स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, तो भगवान को अच्छा काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, अच्छी नौकरी करना नहीं चाहते हैं। वो तो लीला के, तो लीला तो स्वतंत्र इच्छा से इनकी ऐसी अद्भुत क्रिया होती है जो न तो कर्म फल देती है न भगवान को बंधन देती है। तो भगवान पूर्ण आप्त काम यानी कि उसको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कुछ उसका ही है, सही ना? तो आप्त काम होने के कारण उसको स्वर्ग की भी अपेक्षा नहीं। उनका धाम तो वैकुंठ या गोरु वृंदावन कहलाता है, वो स्वर्ग से भी ऊपर का है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का अंश होते स्वर्ग की झंझना मत करें। जो काम चलाव होती है, स्वर्ग में जाकर भी अपने पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो फिर से मृत्यु लोक में चक्कर कटता है। ऐसे बेहतर है हम स्वर्ग लोक से भी ऊपर जो वैकुंठ या आध्यात्मिक स्थान जो है गोलोक वृंदावन जिसे कहते हैं, वहां जाने की कोशिश करें, वो प्राप्त करने की कोशिश करें। स्वर्गीय देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं, यानी कि अपने नौकरों के यहाँ मालिक नहीं रहता, मालिक के यहाँ नौकर रहते हैं। तो स्वर्ग जाने की भगवान को क्या आवश्यकता है? सारे देवता भगवान के सेवक हैं। कोई साधारण स्वामी भी उच्च तुच्छ सुख की इच्छा कभी नहीं करता जो उसके सेवकों द्वारा वांछित हो। अपने सेवक को जो कर्म करते हैं स्वामी की, तो उससे जो फल प्राप्त होता है, तो मालिक के पास तो होता ही है, वो सेवक को देता है फल। तो ऐसे फल प्राप्त करने के लिए मालिक को क्या काम करने की आवश्यकता, उसका है, उसके पास है। इसीलिए लौकिक कर्म एवं कर्म फल से भगवान पूर्ण विरक्त होते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर प्रकट होने वाले नाना प्रकार की वनस्पतियों की हेतु वर्षा नहीं है। यद्यपि वर्षा के अभाव में उनकी उत्पत्ति न हो सकती, तो वैदिक स्मृति में इस तथ्य की पुष्टि है कि निमित्त मात्र में वा सर्व सृज्या नाम सर्ग कर्माणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सूर्य शक्तयः। प्रकृति सृष्टि के परम कारण एकमात्र भगवान है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिसे ब्रह्मांडीय सृष्टि गोचर होती है। देवता मनुष्य तथा निम्न पशु आदि सभी प्राणी पूर्ववत शुभ अशुभ कर्म भोगने के लिए बाध्य है। श्री भगवान इन क्रियाओं के लिए उन्हें समुचित सुविधा और प्राकृतिक गुण के विषय में सुलभ कराते हैं, परंतु जीवों की किसी भी अगली पिछली क्रिया के लिए वे उत्तरदाता नहीं है। भगवान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्टिविटीज। वेदांत सूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि भगवान किसी जीव से पक्षपात नहीं करते, जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान तो केवल बहिरंगा शक्ति अपरा प्रकृति के माध्यम से उसे पर्याप्त सुविधा प्रदान करते हैं। इस कर्म सिद्धांत की संपूर्ण गुप्तता को जानने वाला कर्मफल से लिपावान नहीं होता। भाव यह है कि भगवान के इस दिव्य स्वरूप को तत्व से जानने वाला कृष्ण भावनामृत का अनुभवी पूर्वक कर्म बंधन के अधीन कभी नहीं लेता। जो श्री भगवान के अलौकिक स्वरूप को न जानते हुए यह समझता है कि साधारण जीवों के समान भगवान के कर्म भी सकाम है, वह निश्चित रूप से कर्मफल से बंध जाता है। दूसरी ओर जो परम सत्य के तत्व की जानता है वह पुरुष कृष्ण भावना में स्थित जीवन मुक्त कहलाता है। तो इहार्यस्य हरिर्दास्य मनसा कर्मणा गिरा निखिल अपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। इस जीवन में ही जीते जी हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? जो कर्मों की जंजाल में जन्म मृत्यु के लहर में गोते मारते रहता है तो उसको लिबरेटेड स्टेट कैसे कहेंगे, मुक्त अवस्था कैसे कह सकते हैं? लेकिन जैसे भी हम हैं भगवान के दास बनने का जब प्रयत्न करते हैं, भगवान का सेवक बनने का प्रयत्न करते हैं, तब क्या होता है? और जीवन का ये प्रयत्न मनसा वाचा और कर्मणा तीनों द्वारा करना चाहिए। तो इहार्यस्य हरिर्दास्य मनसा कर्मणा गिरा निखिल अपि अवस्थासु। निखिल यानी सनातन, उसकी जो जीवन की सारी अवस्था जो समेश की बनी रहती है, तो ये अवस्था को ही जीवन मुक्त दशा कहना। जीवन मुक्त दशा, जीवन मुक्त होना इसी जन्म में यहां बैठे बैठे हो सकते हैं। यदि ज्ञान कर्म और ध्यान ये तीनों की उपासना सिर्फ भक्ति में पलट जाती है तो ज्ञान कर्म संन्यास में ये कर्म की जो शिक्षा भगवान द्वारा हमें प्राप्त होती है तो अवश्य हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयत्न करें। भगवान का नाम का इनके स्वरूप का इत्यादि का आश्रय लेकर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में समय बितावें तो वो गलत और हिपोक्रेटिक कहलाता है। ये बुद्धि द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसकी बुद्धि खिल रही है या खिल चुकी है इनके लिए ये जानना बहुत आसान बन जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो कृष्ण भावना का समूचा सम टोटल व्यवहार ज्ञान कर्म और संन्यास ये मिलाकर होता है। तो इहार्यस्य हरिर्दास्य, हम जैसी स्थिति में हैं वैसे, लेकिन भगवान की दासत्व स्वीकारते मन से वचन से और कर्म से भगवान की प्रीति पाने का हम प्रयत्न करते हैं तो जीवन मुक्त कहलाते हैं। जीवन मुक्त दशा जनक राज जो सीता के पिताजी थे उनकी थी। जीवन मुक्त यही जीवन मुक्ति पाना बहुत आसान है। हम अपनी भक्ति बुद्धि द्वारा मुक्ति की क्या व्याख्या करते हैं? भौतिक बुद्धि द्वारा प्रापंच की तैयार बुद्धि है, हरि संबंधित वस्तु न हो मुमुक्षु परित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते। प्रपंच यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के मिश्रणों द्वारा जो बुद्धि प्राप्त करते हैं यानी कि भौतिक बुद्धि, तो भौतिक बुद्धि हमें संसार नहीं करा सकती, उसे लिए तो भगवान द्वारा आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी चाहिए और ये भक्ति में सतत जुड़े रहना चाहिए। भगवान की सेवा जो नाम द्वारा, स्वरूप द्वारा, गुणों द्वारा और लीला द्वारा हम उसका चिंतन कर सकते हैं, तो हमें अपनी मूल स्थिति प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्थान स्थित जहां हो वहां रहो, घरबार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इहार्यस्य यानी कि सारी अवस्था है, कोई शरीर के बंधन में है, कोई गृहस्थ जीवन पालन कर रहा है, कोई सिर्फ मजदूरी कर रहा है, तो इहार्यस्य जैसी है स्थिति उसमें भगवान की सेवा मंत्र से, वचन से और कर्म से जो करता रहता है तो जीवन मुक्त कहलाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि स्थान स्थित स्टे वेरेवर यू आर, लेकिन श्रुति गताम तनु वांगवनो दिहि, शास्त्र में जो न्याय दिया गया है तो उसे मन वचन और कर्म से निभा। तो भक्ति ही ऐसा कर्म है जो कर्म बंधन से छुड़ा सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सिखाने के लिए भक्तावतार बन कर आए, भक्त के रूप में आए। वो भगवान होते हुए भक्त ही कहलाना पसंद करते थे। कई भक्त लोग उनको जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने कानों पर हाथ देते थे, ना 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 मैं भगवान हूं, गलत बातें मत करो, चलो श्रुति यानी कि शास्त्रों के आधार। यदि कोई हम शास्त्र का आधार नहीं देते तो समझो हम हमारी डांडी गुरु यानी कि हम फेल हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन में हरे कृष्णा महामंत्र पाकर भक्ति निष्ठा पूर्वक कर सकते हैं, तो ऐसी निष्ठा सात्विक की श्रद्धा से भी ऊपर उठती है जो आध्यात्मिक अवस्था में। कृष्ण भावना मृत वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर जीव के साथ का व्यवहार जो सनातन कहलाता है वो बताता है, उसे कृष्ण भावना मृत कहते हैं। जो ज्ञान कर्म इन तीनों चीज का समावेश करता है। तो आप लोग किसी को प्रश्न है? हमें हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना चाहिए? वाई शुड वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, क्यों करना चाहिए?
क्यों
हरे कृष्णा महामंत्र क्यों करना चाहिए? हमारे कर्म भक्ति बन जाए, कर्म बंधन तो ऐसे ही छूट जाता है, लेकिन भक्ति कर्म बंधन छूटने के बाद शुरू होती है। हरे कृष्णा महामंत्र कर्म बंधन छुड़वाता है, लेकिन भगवान का प्रेम भी दिलवाता है, इसलिए करना होता। ये जो प्राप्ति है उसकी तुल्य में कोई काम चलाओ चीज भी नहीं आ सकती, चाहे कितनी मामूली हो। आपकी ओर से कोई प्रश्न है? मैंने तो प्रश्न कर दिया।
कर्म विकर्म और अकर्म क्या भेद है?
ये तो अगले अध्याय में आ गए। कर्म अकर्म और विकर्म क्या चीज है? कर्म यानी कि सामान्य रूप से जो बंधन करता है क्योंकि फल की अपेक्षा है वो कर्म है। विकर्म यानी कि अपने स्वभाव से भी विपरीत जो कर्म हमें सूचित नहीं किए गए हैं, नॉट रिकमेंडेड एक्टिविटी, दे आर ऑल विकर्म। लेकिन अकर्म यानी कि भगवान की प्रीति के लिए किया गया कर्म अकर्म कहना। तो क्या करोगे? विकर्म करोगे? अकर्म करोगे? अकर्म भी धीरे धीरे भक्ति में पड़ता है। अकर्म भक्ति। और कोई प्रश्न? जो कर्म बंधन से छुड़वाएगा वो हरे कृष्ण महामंत्र क्यों ना करे? क्या बंधे ही रहना चाहते? बंधन अच्छा लगता है?